ಹೃದಯಂ ದೇಹಂ ವಂದಿತಾ ದೇವನಿಂದ ಪರಿಪೂಜ್ಯಂ ಉಚ್ಚಂ ಅನುಪೇಹಾವೋ ಭವೇಜನಾನಂದ ಜನನಿಯೋ.
ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಬತಾಯಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ ಭೀ ಜನ್ಯ ಜೋ ಜ್ಞಾನ ಹೋತಾ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ ವಿಷಯ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಯೇ ಬತಾಯಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ. ಇಂದ್ರಿಯಜಂ ಮದಿನಾನಂ ಜೋಗಂ ಜಾನೇದಿ ಪುಕ್ಕಲಂ ದವ್ವಂ ಮಾನಸನಾನಂ ಚ ಪುನೋ ಸ್ವಯ ವಿಷಯಂ ಅಖ ವಿಷಯಂ ಚ. ಇಂದ್ರಿಯೋ ಸೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಹುವಾ ಜೋ ಮತಿ ಜ್ಞಾನ ಹೈ ವಹ ಯೋಗ್ಯ ಪುದ್ಗಲ್ ದ್ರವ್ಯ ಕೋ ಜಾನ್ತಾ ಹೈ. ಔರ್ ಮನ ಸೇ ಜೋ ಉತ್ಪನ್ನ ಹುವಾ ಹೈ ಅಪನೆ ಶ್ರುತ ಕೋ ವಿಷಯ ಬನಾತಾ ಹೈ ಔರ್ ಅಕ್ಷ ವಿಷಯ ಚೆ ಇನ್ನೇ ಪಾಂಚ ಇಂದ್ರಿಯೋ ಕೆ ವಿಷಯ ಕೋ ಭೀ ವಹ ಗ್ರಹಣ ಕರ್ತಾ ಹೈ. ಮಾನಸ ಜ್ಞಾನ ಜಿಸ್ಕೋ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ. ಅಪನೆ ಪಾಸ್ ಜಾನ್ನೆ ಕೆ ಸಾಧನ ಛೆ ಹೈ, ಪಾಂಚ ಇಂದ್ರಿಯ ಔರ್ ಏಕ್ ಮನ. ಪಾಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಾ ಹಮೇಶಾ ಹಮೇಶಾ ರೂಪಿ ಪದಾರ್ಥ ಕೋ ಹೀ ಜಾನ್ತೆ. ಪಾಂಚೋ ಇಂದ್ರಿಯಾ ಆತ್ಮ ಕೋ ಜಾನ್ನೆ ಮೇ ಕೋಯಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಹಿ ಹೋತೆ. ಏಕ್ ಬಾರ್ ಶ್ರದ್ಧಾನ್ ಹೋ ಗಯಾ ಫಿರ್ ಬಾದ್ ಮೇ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ ಮೇ ಇನ್ಕಾ ಬಹುತ್ ಕಮ್ ಕಾಮ ಮೇ ಆತಾ ಹೈ. ಜೈಸೆ ಚಲನಾ ಹೈ ತೋ ಇಂದ್ರಿಯ ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೇ ದೇಖ್ ಕರ್ಕೆ ಚಲೇಂಗೆ, ಸುನೆಂಗೆ ತೋ ಶ್ರೋತೇಂದ್ರಿಯ ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೇ ಸುನೆಂಗೆ. ಔರ್ ಜೋ ಕೋಯಿ ಭೀ ಹೈ ವಹ ಸಾರೇ ಸಾರೇ ಕಾರ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯೋ ಕೆ ಅಧೀನ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ. ಜೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕೆ ಕಾರ್ಯ ಮೇ ಹೀ ಕಾಲ ಮೇ ಹೀ ಕಾಮ ಮೇ ಆಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಔರ್ ಜೋ ಹೀ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಾ ಕಾರ್ಯ ಸಮಾಪ್ತ ಹೋ ಗಯಾ ತ್ಯೂ ಹೀ ಪೂರ ಕಾ ಪೂರ ಕಾರ್ಯ ವಹ ಮನ್ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಹೀ ಹೋತಾ ಹೈ ಫಿರ್ ಬಾದ್ ಮೇ. ಔರ್ ಮನ್ ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೇ ಜೋ ಸುನಾ ಹೈ ಪಹಲೆ ಉಸ್ಕೋ ವಹ ವಿಷಯ ಬನಾ ಲೇತಾ ಹೈ, ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ ಮೇ ಕಾರ್ಯ ಹೋತಾ ಹೈ. ಕಿಂತು ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ ಮೇ ಪಾಂಚ ಇಂದ್ರಿಯೋ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಜೋ ಗ್ರಹಣ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ ವಹ ಕಮ್ ಕಾಮ ಆತಾ ಹೈ. ಆತಾ ಭೀ ಹೈ ತೋ ಏಕ ಪ್ರಕಾರ ಸೇ ಬಹುತ್ ನಹಿ ಕೆ ಬರಾಬರ್. ಜೈಸೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಜೀ ಕಾ ಪ್ರತಿಮಾ ಕಾ ವಂದನ ಕರ್ ಲಿಯ ಔರ್ ಜಬ ಬೈಠೆ ಹೈ ತೋ ಪುನಃ ವಂದನಾ ಯದಿ ಕರ್ನಾ ಹೈ ಹೈ ನೀ ವಹಾಂ ಪರ್ ಪ್ರತಿಮಾ, ಆಂಖೆ ಬಂದ್ ಕೀ ಹೈ ತೋ ಉಸ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೇ ಉಸ್ಕೋ ಸ್ಮರಣ ಮೇ ಲಾಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ, ಉಸ್ಕಾ ವಂದನ ಕರ್ ಲಿಯ. ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಹ ಮಾನಸ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತಿ ಜ್ಞಾನ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಜೋ ಗ್ರಹೀತ ಹೋತಾ ಹೈ ವಹ ಶ್ರುತಜ್ಞಾನ ಕೆ ವಿಷಯ ಬನ್ತೆ ಹುಯೇ ಫಿರ್ ಬಾದ್ ಮೇ ವಹ ಅಪನೆ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ ಮೇ ಭೀ ಕಾಮ ಆತಾ ಹೈ. ಪಂಚಾಷ್ಟಿಕಾಯ ಕೆ ಕುಛ ಪ್ರಕರಣ ಜ್ಞಾನ ಕೆ ಪ್ರಕರಣ ಮೇ ಪಾಂಚ ಛೋ ಜ್ಞಾನ ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಮೇ ಅಚ್ಛಾ ಏಕ 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 ದೋ ದೋ ಗಾಥಾ ದೇ ಕರ್ಕೆ ಜೈಸಿನ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಟೀಕಾ ಮೇ ಹೀ ಯೇ ಉಪಲಬ್ಧ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ, ಅಚ್ಛಾ ವರ್ಣನ ಕಿಯಾ ಹೈ. ತೋ ಯೇ ಹೈ ಅಕ್ಷ ವಿಷಯ ಯಾನಿ ಪಾಂಚ ಇಂದ್ರಿಯೋ ಕಾ ವಿಷಯ ಔರ್ ಏಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೇ ಶ್ರುತ ರೂಪ ಜೋ ವಿಷಯ ಹೈ. ಶ್ರುತ ಕಾ ಅರ್ಥ ಶ್ರುತಜ್ಞಾನ ನಹಿ, ಶ್ರುತ ಕಾ ಅರ್ಥ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಸುನಾ ಹುವಾ. ಶ್ರುತ ಕಾ ಅರ್ಥ ಸುನಾ ಹುವಾ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರ ಯಾ ಶಬ್ದ ಕೆ ಜೋ ಸಂಕೇತ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಹಮ್ ಶ್ರುತ ಕಹ ಸಕ್ತೆ. ಶಬ್ದ ಕೋ ಹಮ್ ಶ್ರುತ ನಹಿ ಕಹ ಸಕ್ತೆ, ಕಿಂತು ಶಬ್ದ ಕೋ ಶ್ರುತ ನ ಕಹ ಕರ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಕಾ ಜೋ ಸಂಕೇತ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ಹಮ್ ಅವಶ್ಯ ಶ್ರುತ ಕಹ ಸಕ್ತೆ. ಅಸಂಗಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿ ತಕ್ ಶಬ್ದ ಕಾ ಶ್ರವಣ ತೋ ಕಿಯಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ, ಲೇಕಿನ್ ಶಬ್ದ ಕಾ ಜೋ ಸಂಕೇತ ಹೈ ಉಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಮನ್ ಕಿ ಅವಶ್ಯಕತಾ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೈ. ತೋ ಮನ್ ಕಾ ವಿಷಯ ಶ್ರುತ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ, ಪಾಂಚ ಇಂದ್ರಿಯೋ ಕಾ ವಿಷಯ ಶ್ರುತ ನಹಿ. ಹಮ್ ಜೋ ದೇಖತೆ ಹೈ ವಹ ಶ್ರುತ ನಹಿ ದೇಖತೆ, ಕಿಂತು ಶ್ರುತ ಕಿ ಸಂಕೇತ ಕೋ ದೇಖತೆ ಹೈ. सो हमने सुने या भगवान ने सुनाया है उसके जो संकेत हैं वो लिपिबद्ध यहाँ पर है, जिसको हम शब्द नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहने में आता देखो पांच शब्दों के द्वारा एक गाथा बनी है। शब्द नहीं, शब्द के संकेत, क्योंकि शब्द कभी भी आंखों का विषय नहीं बन सकता और कर्ण का जो विषय है वह आंख का विषय नहीं बन सकता। अच्छे देख करके पढ़ो, देख करके पढ़ो तो शब्द पढ़ने में तो आएगा नहीं, शब्द के जो संकेत हैं वो आएंगे। तो इस प्रकार ये पांच इंद्रिय और मन के माध्यम से यत इंद्रियजम इंद्रिय स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुस्त्रोत्रेभ्य मनसाच जातम उत्पन्नम इंद्रियान इंद्रियजम अवग्रहेया वाय धारणा भेद भिन्नम षट्रिंशत अधिक त्रिशत भेदम मति ज्ञानम। यह जो इंद्रियों से द्वारा उत्पन्न है, स्पर्श का, रस का, घ्राण का, चक्षु इंद्र का विषय बना हुआ है, जो कि अवग्रह या अवाय और धारणा आदि के भेद भिन्न से उसके प्रकारांतर उत्तर भेदों से 336 प्रकार का वह भेद मति ज्ञान होता है, जो कि पुद्गल द्रव्य को ही विषय बनाता है। मति ज्ञान का विषय पुद्गल द्रव्य हो गया, मन को छोड़ करके पूरा का पूरा पूरा पुद्गल द्रव्य बनता है और मन का विषय पुद्गल भी है और श्रुत भी है। बहु बहुविध क्षिप्र अनिश्रुत अनुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम, इस प्रकार ये सूत्र आया था। इति द्वादश वेद भिन्नम, ये 12 प्रकार का पुद्गल द्रव्य, हम ये पुद्गल द्रव्य है। स्पर्श रस वर्ण संस्थानादिकम पदार्थम जानाते, स्पर्शात्मक रसात्मक वर्णात्मक गंधात्मक आदि जो पदार्थ को जानता है। पुनः कथम भूतम मति ज्ञानम, और कैसा मति ज्ञान, मानस ज्ञानम मनसा उत्पन्नम ज्ञानम अनिंद्रिय जात ज्ञानम, मन से जो उत्पन्न होता है यानी अनिंद्रिय से जो उत्पन्न होता है ज्ञान, उसको यहाँ पर मानस ज्ञान कहा। वो कैसा है, श्रुत विषयम अस्फुट ज्ञान विषयम, स्फुट का विषय क्या, श्रुत विषय कहते हैं अस्फुट, हमेशा हमेशा श्रुत अस्फुट रहता है और वति ज्ञान कथंचित स्फुट मैंने स्पष्ट रहता है, उद्घाटित रहता है, इसलिए उसको विशद भी कहा। अस्फुट ज्ञान विषयम श्रुतम अनिंद्रियस्य अविधानात श्रुत ज्ञान ग्रहित अर्थ ग्राहकम। अब यह श्रुत कहने से श्रुत ज्ञान के द्वारा ग्रहित जो अर्थ है वह ले लेना, ऐसा नहीं कि श्रुत का अर्थ और कुछ, श्रुत ज्ञान के द्वारा अर्थ क्या गए, तो कल जो अनुभव अनुमान के विषय बताए गए थे, अग्नि जो है यह श्रुत ज्ञान का विषय हो गया अथवा अनुमान का विषय हो गया। हमेशा हमेशा श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के द्वारा ग्रहित पदार्थ से पदार्थांतर का ज्ञान जो कराता है उसका नाम श्रुत ज्ञान होता है। मति ज्ञान का जो विषय बना था उसी को विशेष रूप से यदि कोई जानता है तो अवग्रह से जैसे ईहा, ईहा से जैसे अवाय, अवाय से जो धारणा आदि आदि, अथवा स्मृति, प्रत्यविज्ञान, तर्क और व्याप्ति आदि जितने भी आ जाते हैं वो सारे के सारे उसी के साथ जुड़ जाते हैं। पदार्थांतर का जो ज्ञान कराया जाता है मति ज्ञान के विषय के अलावा उसका नाम श्रुति ज्ञान है, जिसको अस्फुट बोलते हैं। अस्फुट ज्ञान विषय हम श्रुति ज्ञान मानते अभिधान। जब पुनः कृदृक्षम, और कैसा है, अक्ष विषयम इंद्रिय ग्रहित अर्थ ग्राहकम, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण में आया हुआ जो अर्थ है उसी को ग्रहण करता है, ये मति ज्ञान का विषय। पंचेन्द्रिय ज्ञानानां क्रमेण उपयोग न युपति इति भंबनी कहते हैं। पंचेन्द्रियों का जो ज्ञान होता है वो एक साथ नहीं होता, क्या भले ही आप सामग्री लेकर के बैठ जाओ पांचों इंद्रियों की, लेकिन उपयोग में आएगा क्रम से वही, जिस समय में रूप को देख रहे हैं उस समय शेष चार इंद्रियों का विषय आपके दिमाग में नहीं आ सकता। कोई भी एक इंद्रिय का विषय आपके पकड़ में आ सकता है, बाकी कुछ भी नहीं। इसलिए ज्यादा संग्रह की कोई आवश्यकता है ही नहीं। मान लीजिए चारों सारों पदार्थों को रख लिया सामग्री, अंतर्मूर्त कम से कम एक इंद्रिय के विषय को बढ़ने करने के लिए लगेगा, और क्रम से अंतर्मूर्त पांच अंतर्मूर्त होगा तो लास्ट में पांच अंतर्मूर्त लगेंगे, उस समय वह काम में आने वाली सामग्री। पहले से क्यों जबरदस्ती करते हैं? लेकिन मोह का ऐसा परिणाम रहता है, फिर प्रबंध करके रख लेता है, काम में आवे या नहीं आवे उसके बीच में यदि मान लो रवाना हो गया तो हो गया, लेकिन रखता तो है, नहीं मिलता तो बहुत बड़ा विरोध खड़ा हो जाता है। हाँ, ये तो विषय दे रहे हैं आप, चार विषय और दे ही नहीं रहे, क्रम से लोगे ना, लेंगे तो सही लेकिन ला करके रख तो दो, हम क्रम से ले लेंगे, कब बीच में युद्ध क्रम से भी प्रयोग में ला सकते हैं ना, लेकिन फिर भी युद्ध क्रम से भी लोगे तो भी एक साथ तो कोई ना कोई लिया नहीं जा सकता, एक लेते हैं तो चार तो बिल्कुल प्रतीक्षा में रहते हैं। संसारी प्राणी को संतोष नहीं होता समझे, कितना भी कर ले संतोष नहीं होता, ऐसी कौन सी बीमारी है कुछ समझ में नहीं आता। कोई संतोष नहीं, एक जवान है तो वो ठीक है, एक बूढ़े हो उनको भी संतोष नहीं, नाती को भी संतोष नहीं और दादा को भी संतोष नहीं, तो संतोष कहां से आएगा? हाँ, बूढ़ों की हाँ आपकी भी लाइन वैसी हो तो है। बहुत वैचित्र लगता है कि इतने जब सर्विस अनुभव भी हो गया लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, हम क्या समझा है, क्या स्वाध्याय का फल मिलेगा, क्या देव दर्शन और क्या संत समागम और क्या स्वाध्याय और क्या अनुभव रह करके भी क्या हुआ, ये संयम के बिना नहीं होता। 80 साल के उपरांत भी संतोष ना हो और 8 वर्ष में भी उस दादाजी को भी पढ़ाई पढ़ा सकता है, वो 8 वर्ष का लड़का, यह संयम की एक महिमा है। ये जानते हैं वो सारे सारे लोग लेकिन फिर भी संतोषी देवी आती नहीं। कर्म सिद्धांत को जानने के लिए भी सर्वप्रथम संतोष ही रखना पड़ता है। जब विश्वास हो जाता है तो फिर संतोष वह अपना धर्म जैसा हो जाता है, नहीं तो तब तक के लिए वह संतोष रखो और देखो विचार करो आदि आदि। बहुत दूर जाकर के पुनः घूम करके आने की अपेक्षा थोड़े संतोष धारण करके जानकारी ले ले तो बहुत अच्छा रहता है। अरे समय फालतू क्यों, चलो। लेकिन जो रॉन्ग जाकर के पुनः वापिस आने की अपेक्षा थोड़े से समय खर्च करके सोच लेते तो बहुत अच्छा हो जाता। मान लो आपके साथ 3-4 और लग जाते हैं तो उनको भी भटक करके आना पड़ेगा, और मान लीजिए आप तो आ गए लेकिन शेष चारों नहीं आ पाए, उनके श्रद्धान में बात नहीं आई तो गए, ऐसा भी होता है। लेकिन फिर भी एक विषय ऐसा है, संतोष तो धारण करना पड़ता है। बच्चों के लिए जबरदस्ती करवाया जाता है, बूढ़ों को ऊपर तो जबरदस्ती तो हो नहीं सकते क्योंकि वो पढ़ाने वाले होते हैं, समझदार होते हैं, उनके लिए हिसाब का है, चुप बैठ आज का आया और शिक्षक उपदेश देता है, यही सीखा है बस। इस एक बात सुन करके आश्चर्य तो तब होता है जब 8 वर्ष के नाते भी मान लो समुचरण में दीक्षित हो जाता और पूर्व कोटि वर्ष के दादाजी नहीं होते तो वहाँ का एक चित्र तो खींचने योग्य होगा, वहाँ पर भी वीडियो कैसेट बनाते जाते हैं। हाँ, बनाते होंगे, कुछ तो होता होगा। फिर भी समझ में इसलिए नहीं आता कि कुछ कर्म ऐसे ही उदय में रहते हैं, आ भी नहीं सकता। पदार्थ जाना श्रुत विषय पंचेन्द्रियान क्रमेण उपयोग पंचिंद्रिय नानानम मध्ये एकम च होदि ऊजत्तम मन नाने ऊजत्तो इंद्रियानम न जानेति। पांच इंद्रियों के ज्ञान पांच होंगे लेकिन उनमें से एक ही ज्ञान काम में आता है, इसी को उपयोग बोलते हैं। क्षयोपशम पांचों का है लेकिन उपयोग तो एक ही इंद्रिय का एक विषय को ग्रहण करने रूप ही होता है। जैसे समझने के लिए एक किताब ले लो पढ़ो तो एक पृष्ठ पढ़ा जाएगा, पहले क्या होगा 365 मान लीजिए पृष्ठ हैं एक किताब के, किताब पढ़ लो ले लो लेकिन एक ही पृष्ठ एक क्रम में आएगा। एक पृष्ठ में मान लो 30 लाइन हैं तो 30 लाइन में एक ही लाइन पढ़ने में आएगी, और एक लाइन में मान लो 40-50 अक्षर हैं तो सर्वप्रथम वह एक अक्षर ही पढ़ने में आएगा या एक शब्द पढ़ने में, एक शब्द में भी एक अक्षर ही पहले पढ़ने में आएगा। और एक अक्षर में भी मूढ़ा अलग है, उसका पेट अलग है, उसके टांग अलग हैं, वो अलग हैं, ये सारे सारे भिन्न हैं। ये धीरे धीरे मिल करके फिर बाद में अक्षर अक्षर से शब्द शब्द से वाक्य वाक्य से फिर अध्याय आदि पूर्ण हो जाते हैं। ये क्रम है, कितने भी आप जल्दी कर लो ये दूसरे अक्षर को पहले पढ़ लो फिर बाद में वो लगा दो ऐसा भी नहीं हो सकता। पहले वहां दृष्टि रख करके आप भगाते चले जाओ। अभ्यास होने के कारण बहुत जल्दी काम होता चला जाता है, क्योंकि अर्थ हमारे दिमाग में रहता है इसलिए अर्थ भी उसके साथ साथ होता चला जाता है, अभ्यास के कारण ऐसा होता है। उसी प्रकार शास्त्रों में आता है प्रज्ञाश्रमण ऐसे होते हैं कि उनके वो कभी भी जनवाणी का मतलब पूर्व इत्यादि का अध्ययन नहीं भी करते हैं तो भी पूर्व विषयक कोई भी विषय आता है तो उसको चर्चा के दौरान कोई भी उसमें उलझ गए मान लो तो बिना पढ़े भी उसको उत्तर वो दे देते हैं, बिना पढ़े भी इतना क्षोभम उनको हो जाता है। तो या फिर इसके उपरांत पांच इंद्रिय के अलावा मन का जो ज्ञान होता है उस समय इंद्रिय ज्ञान नहीं होता, जिस समय मानसिक ज्ञान होता है उस समय इंद्रिय ज्ञान नहीं, और इंद्रिय ज्ञान जिस समय होता है उस समय पांचों इंद्रियों का ज्ञान एक साथ नहीं होता। ये क्रम है। पंचेन्द्रिय ज्ञानानां स्पर्श रसन ग्रहण चक्षु श्रोत्र श्रोत्रज ज्ञानानां मध्ये एकस्मिन् काले एकम ज्ञानम उपयुक्तम उपयोग युक्तम विषय ग्रहण व्यापार युक्तम भवति ही। मनोज्ञाने उपयुक्ते नौ इंद्रिय ज्ञाने उपयुक्ते विषय ग्रहण व्यापार उपयुक्ते सति इंद्रिय ज्ञानम पंचेन्द्रियाणाम ज्ञानम न च न जायते न उत्पद्यते। ये निश्चित है। इसलिए मुख्य रूप से ध्यान प्रणाली में आचार्यों का अभिमत यही है कि इंद्रियों का जब विषय बनता है उस समय शुक्लादि ज्ञान नहीं होते। हाँ, धर्म ज्ञान तक तो इंद्रिय विषय संभव है, शुक्ल ज्ञान के साथ इंद्रिय विषय संभव नहीं, ये बात अलग है। चक्षु दर्शन इत्यादि उपयोग का उल्लेख अन्य आचार्यों के अनुसार होता है, अन्य का मतलब जय धवला इत्यादि के अनुसार होता है। इससे भी फलितार्थ यही निकलता है क्योंकि वह व्यापार के रूप में है क्या उपयोग के परिवर्तन के रूप में ऐसा प्रश्न किया जाए तो निश्चित उसमें भी कोई ऐसा उत्तर नहीं मिलता है कि व्यापार तो प्रवृत्ति का मूलक होता है, व्यापार प्रवृत्ति मूलक होता है, प्रवृत्ति जो है प्रमाद का सूचक होता है, इसलिए उसमें इंद्रियों का व्यापार तो नहीं होता हो, फिर भी चक्षु दर्शन का अर्थ वहां पर उपयोगों में भीतर से परिवर्तन हो गया और वह चक्षु दर्शन इत्यादि आ गए ऐसा लेना यहाँ पर उपयुक्त लगता है, क्योंकि अप्रमद दशा का खंडन नहीं होना चाहिए। अप्रमद दशा बनी रहती है, जब अप्रमद दशा बनी रहती है तो व्यापार उसमें इस ढंग से नहीं होगा, जो ही व्यापार होता त्यों ही प्रमाद भूमिका में आ जाता हो, इसलिए नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी चक्षु दर्शन उपयोग नहीं होता ऐसा तो उल्लेख नहीं है। आया यदा स्पर्शेन्द्रियाणि स्पर्शो विषय ग्रहियते, जिस समय स्पर्शेन्द्रिय के द्वारा स्पर्श विषय ग्रहण में आ जाता तदा रसनेन्द्रिय ज्ञाने न रस आदि विषयों न ग्रहते, उस समय रसनादि इंद्रियों के द्वारा रसादिकों का ग्रहण नहीं होता। एवं रसनादिशु योज्यम, इसी प्रकार रसनादिक में तरी अपर इंद्रियाणाम ज्ञानानि तत्र दृश्यन्ते तत्कथम इति चेत्, ऐसी स्थिति में अन्य इंद्रियों का विषय ज्ञान होता हुआ ऐसा लगता तो है, लगता है लेकिन उस समय उपयोग में वह नहीं रहता। जैसे दूसरा हम उदाहरण दे देते, मुनि महाराज आहार के लिए निकलते हैं, आहार के निकलते आहार मान लो चालू हो गया, और चालू हो गया तो क्या एक घंटा मान लो लग गया, तो एक घंटा क्या वो प्रमाद दशा में है? नहीं। तो फिर क्या अप्रमाद दशा में है? आहार लेने की क्रिया तो रुकी हुई नहीं है, लेकिन प्रमाद जैसे होते रहते हैं, छठा सप्तम गुणस्थान, छठा गुणस्थान, सप्तम गुणस्थान इस प्रकार होता रहता है, उसी प्रकार उपयोग का परिवर्तन होता रहता है। हम लोगों के दिमाग में वह बात नहीं आती। एक साथ तीन योगों में से एक ही योग होता है, हम एक घंटे तक स्वाध्याय कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक घंटे तक केवल वचन योग ही है क्या? ऐसा है नहीं, क्योंकि कोई भी वाक्य का निर्माण होता है तो मनोयोग के बिना नहीं हो सकता, और मनोयोग जिस समय होता है उस समय बोलना न तो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कहा आचार्यों ने, मनोयोग जिस समय होता है उस समय वचन योग नहीं रहता, लेकिन मनोयोग के होते हुए भी बाहर से बोलने की प्रक्रिया तो चल सकती है। जैसे एक मुनि महाराज आहार ले रहे हैं, लेकिन आहार संज्ञा छठे गुण स्थान में, और आहार लेने की प्रक्रिया अप्रमद दशा के साथ सप्तम गुण स्थान में हो जाती है, ये चलता रहता है। अब ये कहे या तो संशोधन कर लो या तो भोजन कर लो, ऐसा कोई कह दे, पहले हमने भी यही सोचा था कि ये तो कोई ऐसा संशोधन कर लो फिर चबा लो, जिस समय चबा रहे हैं उस समय संशोधन तो नहीं कर सकते। यदि ऐसा हो जाए तो बहुत ही कम खाने की क्रिया बहुत कम होगी और समय बहुत ज्यादा लगेगा, नहीं समझी? इधर चरवण भी चलता रहता है, इधर देखते भी रहते हैं, और तो वो जिनको अभ्यास हो गया उनको ज्यादा बताने की कोई आवश्यकता है ही, सारे क्लियर हो जाता है विषय। तो अभ्यास होने से सारी क्रियाएं गौण मुख्य होती चली जाती हैं, और जिस समय गौण मुख होते रहते वो गुणस्थान एक नहीं रहता, जिस समय प्रमाद में आ जाते छठा गुणस्थान हो जाता, अप्रमाद में चले जाते सप्तम गुणस्थान हो जाता, अप्रमाद के साथ ईश्वर समिति चलती रहती है, और जो ही इच्छा एक क्रास और की हो गई तो ही पुनः प्रमाद आ जाता, ये चलता रहता है। मतलब एक रास ले लिया मुख में ये चला गया तो हाथ में एक रास और आ गया, मतलब कम से कम भी दो ग्रास स्पेयर में चलते रहे। नहीं, वो बोले उधर नहीं, उधर का वो अलग है, वो पाक शास्त्र की बात है। अब इधर देखो ना, ये यूं कर रहे हैं और मुख तो चल रहा है, तो मुख में एक रास है उसका चरवण हो रहा है और हाथ में ले रहे हैं, ये इस प्रकार छठा सातवां होता रहता है, फिर भी एक साथ नहीं होता। उसी प्रकार जिस समय वचन हम बोल रहे हैं उससे पूर्व में मनोयोग हुआ था, अब वचन योग हो रहा है, और लेकिन बोल रहे हैं उसके साथ साथ वाक्य की संरचना भी हो रही है, शब्दों को कौन सा शब्द का चयन करें ये भी मनोयोग पूर्वक ही होता है, ऐसा नहीं कि वचन योग पूर्व हो रहा। हाँ, तो इसी प्रकार जब भगवान बोलेंगे उस समय उनके लिए भी वचन योग रहेगा तो मनोयोग नहीं रहेगा, मनोयोग रहेगा तो वचन योग नहीं रहेगा, फिर भी चार बार दिव्य ध्वनि उनकी कीर्ति है अबाधित रूप से, दो दो घड़ी कितनी, तीन तीन घड़ी, हाँ तीन तीन मुहूर्त को घड़ी तो बहुत हो गई, फिर तीन मुहूर्त का तो छह घड़ी हो गई, छह घड़ियां, हाँ वही 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो ये होता ऐसा कि कहीं नहीं पड़ी अथवा मनुष्य यदा जीव मनसा एकाग्र चेतसा आर्त्रोत्र धर्मादि ध्यानम धरति, जिस समय यह जीव मन के द्वारा एकाग्र ध्यान कर लेता, आर ध्यान रौद्र ध्यान या धर्म ध्यान आदि कर लेता, तथा इंद्रियानाम ज्ञानम न स्फुरति इत्यर्थ है, उस समय इसके पास इंद्रियों का ज्ञान नहीं रहता। वा इंद्रिय ज्ञानम एक एकम जानाति, इंद्रिय ज्ञान तो एक एक को ही जानता, चक्षुर ज्ञानम घ्राणम न जानाते, ये भी निश्चित है, आंख कभी नासेंद्रिक नाशिका का विषय नहीं पकड़ सकता। ननु यद भवद्भि उक्तम एकस्मिन् काले एकस्य एव इंद्रिय ज्ञानस्य उपयोगः तदपि अयुक्तम। कोई शंकाकार कहता है जो आपने कहा एक काल में एक ही इंद्रिय का ज्ञान होता है उपयोग, वो ठीक नहीं है। केनचित् पुंसा करग्रहित शशकुल्याम भक्षमानायाम सत्याम तद्गंध ग्रहणम ग्रहणस्य तच्च वर्ण शब्द ग्रहणम स्रोतस्य तद्वर्ण ग्रहणम चक्षुषु तत्स्पर्श ग्रहणम करस्य तद्रस ग्रहणम जिह्वायाश्च जायते। अब देखो कोई भी व्यक्ति अपने अपने हाथ में कोई ग्रास खा रहा है, कोई भी मोदक मिठाई है मान लो वो खा रहा है, अब खा रहा है जिस समय वह खा रहा है, जिस समय खा रहा है उसका नाम क्या है, किसने पूछा, उन्होंने बताया कि वो खा लो, तो उसने सुन लिया कि ये खाना है, जिस समय सुना उसी समय उसने उसको खा लिया, तो कर्मेंद्र का भी विषय हो गया और रसेंद्र का भी विषय हो गया, और जिस समय खा रहा उसी समय नाक के द्वारा हुआ गंध भी सूंघ ली, और उसको किस वर्ण का है उसका देख भी लिया, और उस समय हाथ से छुआ या मुंह से ओठ से छू लिया, उस समय स्पर्श का भी ज्ञान हो गया, इसलिए तो एक साथ पांचों का होता है, आप भूल गए, ऐसा शंकाकार का कहना है। इति पंचेन्द्रियाणाम ज्ञानस्य उपयोग युगपत उत्पद्यते इति वाद वावदूकम वाजिनम प्रति आ। हाँ, शब्द थोड़ा समझ में नहीं आया, बाकी सब ठीक है। प्रतिवाद रूपम, इस प्रकार प्रतिवादी के लिए यह वादी बताता है। एक एक काले एकम नानम जीवस्य होदि ओजत्तम, नाना नानानि पुनो लज्ज सहाविन उच्चन्ते। एक काल में एक ही ज्ञान होता है जीव को उपयोग के रूप में, किंतु नाना ज्ञान जो होते हैं वह लब्धि के रूप में अथवा क्षेपशम शक्ति के अपेक्षा से हुआ करते हैं। उजुत्तो अनुजुत्तो वाली बात यहाँ पर ले लेना, किसी ने LLB भी की है और किसी ने डॉक्टरेट की भी की है, अपने MBBS भी किया आदि आदि मान लो, फिर भी जिसको वो काम में ले रहा है उसी में उसका उपयोग माना जाता, बाकी उसका अनुविजुत यानी उपयोग में नहीं आता, ऐसा माना जाता। उसी प्रकार यह है कि कैपेसिटी हमारी इतनी है लेकिन उपयोग एक समय में एक का ही होता है, इसका तात्पर्य। यहाँ तक तो हो ही गया है। एवं रसनादि सूचम तरी अपर इंद्रियाणाम ज्ञानानि तत्र दृश्यन्ते तत्कथम इति। अब अन्य समय में कुछ अन्य इंद्रियों के विषय देखे जाते हैं, वो कैसे आप कहेंगे, पुनः नाना ज्ञानानि अनेक प्रकार ज्ञानानि स्पर्शनादि अनेक इंद्रियाणाणि लब्धि स्वभावेन, किंतु वे लब्धि के रूप में ही रहते हैं, उपयोग के रूप में नहीं रह सकते। यदि उपयोग के रूप में रहने लग जाए तो क्या होगा, बहुत बड़ा संवाद हो जाएगा, 12वें गुणस्थान में भी मनपरिक ज्ञान हो जाएगा, और 12वें गुणस्थान में मनपरिक ज्ञान यदि हो जाएगा तो दूसरे के मन में स्थित विषय के बारे में रूप पदार्थ के बारे में वह चिंतन प्रारंभ हो जाएगा, जबकि शुक्ल ध्यान के समय पर यह सब कार्य नहीं हुआ करते। और 12वें गुणस्थान में भी स्पर्शन ज्ञान यदि है तो वह स्पर्शन ज्ञान होने लग जाए तो इंद्रिय का व्यापार भी उसको होने लग जाएगा, ऐसी स्थिति में बहुत सारी स्थिति आ जाएगी। हाँ, लब्धि रूप में रहता है। कई लोग ये भी इसको घटाने के लिए क्या करते हैं कि सम्यक दर्शन भी लब्धि के रूप में रहता है, शुभ उपयोग या अशुभ उपयोग ये लब्धि के रूप में रहते हैं ऐसा मानते, ऐसा नहीं। उपयोग हमेशा हमेशा एक ही हुआ करता है, जैसे इंद्रिय ज्ञान एक होता है उसी प्रकार उपयोग भी एक ही होता है, लब्धि में कोई उपयोग नहीं हुआ करता है। लेकिन फिर भी ऐसा चर्चा तो चलती रहती है। हाँ, लब्धि स्वभाव ने अर्थ ग्रहण शब्द लब्धि नाम है प्राप्ति ही तत्स्वभाव ने तत्स्वरूप ने उच्चंत कहते हैं। अतः वस्तु न अनेकांतात्मक एकांतमकम च दर्शयति, वस्तु अनेकांतात्मक भी है और एकांतात्मक भी है, दोनों प्रकार से अनेकांतमय है। जम वस्तु अनियंतम ईयंतम तम विहूद सविपिक्खम स्वेनानेन नैहिय निर्विखम दिशदे नैव। जं वत्थुम अनियंतम, जो वस्तु अनेकांतात्मक है, यानी वस्तु को हम जब अनेकांत रूप में स्वीकार करते हैं तो किसी अपेक्षा सविविखम तम पि होद एयंतम, वह भी एकांत भी हो सकता है, अनेकांत में हो सकता है और एकांत भी हो सकता है। कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो तो कक्षा की जब विवक्षा बना लेते हैं तो सातवीं आठवीं ग्यारहवीं बारहवीं ऐसी कही जाती है। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो तो फिर अब कहना और अलग होगा, व्यापक रूप से कहा जाएगा। स्कूल कहने से कितनी कक्षाएं उसमें वह गौन होकर के वो फलाने स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, तो वहां पर तो 16वीं कक्षा तक है, ठीक है। कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो तो इतनी कक्षा में पढ़ रहे हैं, और कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो तो एक द्रव्य दृष्टि से और एक पर्याय दृष्टि से, एक एकांत और एक अनेकांत। इस प्रकार इसको हम विद्यार्थी की अपेक्षा से देखते हैं तो 16 कक्षा जब तक पार नहीं होता तब तक वह विद्यार्थी 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 होता चला जाता। कब से पढ़ रहे हो, कहीं विद्यार्थी विद्यार्थी होते हैं ये समझ में नहीं आता। इसने पूछा ये कहाँ जा रहे हो, स्कूल जा रहे हैं, कितने दिन से जा रहे हैं, अभी क्या आप विद्यार्थी हैं, हम विद्यार्थी, एक पहली कक्षा में भी विद्यार्थी और 17वीं कक्षा में भी विद्यार्थी, 10वीं कक्षा में भी विद्यार्थी। हमने सोचा था विद्यार्थी के बाद कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, जब 17 साल पढ़ने के उपरांत भी आप विद्यार्थी है तो हमें ये नहीं चाहिए। अनेक अंत के रहस्य नहीं समझने से ऐसा होता है, तो इसलिए ये कहना पड़ता नहीं हम पहली कक्षा में थे अब दूसरे में आ गए, दूसरे स्कूल में नहीं आए दूसरी कक्षा में आए, तीसरी कक्षा में आए। उसकी बहुत सारी सीढ़ियां हैं, एक 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 सीढ़ियां पार की जा रही है, लेकिन जब नशेनी की ओर देखते हो तो नशेनी पर चढ़ रहे हो, कितने चढ़ रहे हो नशेनी के ऊपर, तो नशेनी में तो बहुत सारी सीढ़ियां आ जाएंगी, लेकिन सीढ़ियों की गिनती लेते हैं तो परिवर्तन होता चला जा रहा है, परिवर्तन होता चला जा रहा है। भावों की अपेक्षा से देखते हैं तो एकांत होता है, और द्रव्य की अपेक्षा से देखते हैं सामान्य की अपेक्षा से तो अनेकांत, ये सारे सारे उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। सुनानी नहीं यह निर्विखम दिश्य देने किंतु क्या बोलते हैं ना वो स्वयं स्तोत्र में अनेकांतो पनेकांत है प्रमाण नये साधन है, अनेकांत है प्रमाणाते ते प्रमाणात अनेकांत है, और अनेकांतो पनेकांत प्रमाण नये साधन है अनेकांत प्रमाणाते तद एकांतो नये आश्रित है, नये के आश्रित जब देखते हो तो एकांत होगा और प्रमाण के आश्रय लेते हैं तो वह अनेकांत होगा। प्रमाण चूंकि समष्टि को ग्रहण कर देता है, नय को चूंकि वह व्यष्टि को ग्रहण करता है अंश को ग्रहण करता है, प्रमाण से के द्वारा ग्रहित पदार्थ के तक पहुंचाने के लिए एक अंश के माध्यम से वह पहुंचा देता है, नय प्रमाणेन ग्रहितम अर्थम इति नयः। प्रमाण के द्वारा ग्रहित पदार्थ तक एक अंश की विवक्षा को लेकर के पहुंचाने का कार्य करता है वह नय माना जाता है। तो नय हमेशा हमेशा एकांत का आश्रय लेता है और प्रमाण हमेशा हमेशा अनेकांत को विषय बना देता है। यह प्रमाण और नय, प्रमाण और नय हमेशा हमेशा चलते रहते हैं। इसलिए एकांत होते हुए भी अनेकांत की ओर उसकी दृष्टि होने से अथवा अनेकांत के मय जो पदार्थ को पदार्थ तक उस एक अंश के माध्यम से पहुंचाने का कार्य करता है, इसलिए वह नय भी प्रमाण की कोटि में आ जाता है, अन्यथा नहीं। एक कक्षा भी एक प्रकार से ज्ञान रखता है, दूसरी कक्षा में भी ज्ञान आता है, इस सारे के सारे समष्टि पूर्ण विद्या कहलाती है। तो इसी ढंग से थोड़े 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 करते करते एक साथ कोई भी व्यक्ति पूरे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कर दे संभव नहीं है, थोड़े थोड़े करते हुए चलते हैं। उसमें भी एक साल में भी तिमाही की परीक्षा अलग है, छह माही परीक्षा अलग है, नौ महीने की परीक्षा अलग है, साल की परीक्षा अलग है, हफ्ते की परीक्षा अलग है और प्रतिदिन एक प्रकार से होमवर्क करवाते हैं तो वो भी एक प्रकार से परीक्षा ही है। होमवर्क करके नहीं आए तो स्कूल वर्क तुम्हें नहीं दिया जाएगा, पहले कर लो। हाँ है? बिल्कुल, कितनी क्लास करना है जितना चाहो उतना कर सकते, लेकिन उसकी एक विधि है, उसके बिना नहीं। सुनानी नहीं ही यह निर्विकम दिशे नहीं हो। यद वस्तु जीवादि द्रव्य एकांतम अस्तित्वादि एक धर्म विशिष्टम, जो जीव एकांत से अस्तित्वादि धर्म के अपेक्षा से विशिष्ट है। जीव अस्ति की तदेव जीव जीवादि वस्तु सव्यपेक्षम सापेक्षम आकांक्षा सहितम, दूसरे की अपेक्षा से वह है अन्यथा नहीं। जिस समय जिसकी हम प्ररूपना कर रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, अन्य का वह निराकरण नहीं होता न निरात्मक ही, अन्य जो है निरात्मक नहीं होता किंतु वह गौण होता है। विवक्षितो मुख्य इति इसी स्थिति अन्य न निरात्मक है, अन्य जो है निरात्मक नहीं अर्थात उसका निषेध नहीं किंतु गौण उसका कहा जाता है। विवक्षित मुख्य हो जाता है और अविवक्षित गौण हो जाता है। गौण का अर्थ निराकरण नहीं, निषेध नहीं, एक का विधान है तो दूसरे का निषेध नहीं, दूसरे को हम गौण कर देते हैं। स्वद्रव्य चतुष्टय अपेक्षा अस्ति एकांतात् विशिष्टम्, परद्रव्य चतुष्टय अपेक्षा नास्ति धर्म विशिष्टम्, अस्ति धर्म की अपेक्षा से है के रूप में, नास्ति धर्म के रूप में नहीं के रूप में वही द्रव्य किंतु पर व्यवस्था की अपेक्षा से वह नहीं है। अनेकांतात्मकम वस्तु, और वस्तु जो है हमेशा अनेकांतात्मक। स्वतज्ञान जिनोक्त शास्त्र बोधेन नैगमादि नयेच्च नैगम संग्रह व्यवहार सुदयेच्च अनेकांतात्मकंच वस्तु भवति। किंतु स्वतज्ञान का अर्थ जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो शास्त्र बताया, शास्त्र बोध की अपेक्षा से नैगम है, संग्रह है, व्यवहार है, रुचि सूत्र है, शब्द नए हैं, समय विरूढ़ है, एवं भूत नए आदि आदि के द्वारा यह वस्तु अनेकांतात्मक है। यह तो कहा ही था नैगम स्थूल नहीं है। देखो नैगम नहीं का विषय जो बनता है उससे पूर्व में कौन सा नहीं था ये पूछा जाए, यानी ज्ञान के पूर्व में जैसे दर्शन रहता है, दर्शन एक प्रकार से सामान्य माना जाता है, निराकार माना जाता है, उसमें भेद भिन्नता नहीं रहती क्योंकि उसमें विशेषता रहित रहती है। और दर्शन के विषय के बाद में दर्शन के द्वारा जो विषय ग्रहित हो गई, जो निराकार के रूप में गई, अब वह ज्ञान के रूप में स्वीकृत हो जाए, दर्शनोपयोग चला गया, ज्ञानोपयोग आ गया, तो अवग्रह सर्वप्रथम होगा। अवग्रह भी निर्णीत अभी नहीं हुआ, उससे पहले दर्शन का अभाव हुआ, अवग्रह निर्णित अभी नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं, उसके बीच में जो ज्ञान का ज्ञान की धारा है वो किमात्मक है, वो ज्ञानात्मक, ये सारे के सारे चूंकि विषय विषयी सन्निपात के बाद के, और इसमें हमेशा हमेशा अपने विषय ही ग्रहित होते चले जाते, दूसरे के विषय ग्रहित नहीं होते, किंतु उनका निषेध नहीं होता। ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ जो श्रुत ज्ञान है उसके कारण इसी ढंग से हम ग्रहित करते हैं। प्ररूपण भी इसी प्रकार हुआ करता है, जानो भले ही पूर्ण एक साथ, लेकिन प्ररूपण तो आप करेंगे क्रमशः ही। जैसे जैसे मान लो एक अक्षर आपने देख लिया, पढ़ लिया, आंखों का विषय एक साथ हुआ है वो, उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत समय लग गया, क्योंकि बहुविध एक विध आदि जो ज्ञान होता है एक साथ वो आपको हुआ। लेकिन उस अक्षर को लिखना चाहे तो एक साथ एक अक्षर को आप लिख नहीं सकेंगे, इसमें क्रम होगा, पार्ट्स बनेंगे और वो पार्ट्स के भी कुछ समय निर्धारित होंगे, जबकि जानने में समय निर्धारित नहीं हुआ, एक साथ पूरा का पूरा अक्षर हमारे कान आंखों में आकर के सुनने में, शब्द सुना तो एक साथ सुनने में आ गया, जानकारी हो गई हमें एक अक्षर का क ऐसा बोला तो एक साथ सुना, ऐसा तो है नहीं कि उसके में कुछ गड़बड़े। तो ज्ञान होने में हमारे लिए एक साथ होते हुए भी उसके लिखने में क्रम होता है। हाँ, टाइपिंग हो जाती है। देखो टाइपिंग में और लेखन को आप इतने इंजीनियरिंग करते हुए सुनो तो हमने लेखन कहा है, टाइपिंग लिए नहीं कहा है। वो ऐसा है, टाइपिंग में पहले से वो कंपोज के वहीं पर अक्षर फिट किए हुए हैं पूरे के पूरे, उसमें कोई मोड़ा वगैरह करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब लिखेंगे लिखने से उस समय उसके मोड़े अलग लिखेंगे, पेट अलग लिखा जाएगा, ये अलग लिखा जाएगा, क्रम से ही एक अक्षर लिखा जाएगा। टाइप में तो एक साथ जो है वह एक किया जाता। अब ये सोचना चाहिए आप लोग इतने वैज्ञानिक विषय छेड़ते हो। बाकी सब जो उदाहरण दे दिया उसको जमा लो, अक्षर लिखने में तो क्रम लगेगा, जानने में नहीं। उदाहरण देखने उदाहरण देने से पहले सोच लेना चाहिए आप लोगों को। शुभ प्रार्थना।